أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری آج کی گفتگو پھر معارف در دعائے معصومین کے حوالے سے ہے, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلے جمعے کو پھر ہم جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اجتماعی امور در قرآن, پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. تو ہم جب معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کے حوالے سے, آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے اس کو ایک ٹاپک وائز ایک بات ترتیب سلسلہ بنانے کی کوشش کی ہے, اور اس میں ہم نے کئی ٹاپکس کو دیکھا, جیسے حاجات کا بر لانا, دن اور رات کی دعائیں, اور پھر اس کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ مشکلات میں جب انسان پڑ جاتا ہے, جب پریشانیاں مصیبتیں اس کو گھیر لیتی ہیں, تو اس وقت ائمہ علیہ السلام کی دعائیں کیا ہیں اور کس قسم کی ہیں. تو اس میں ہم نے پچھلی دفعہ دعا نمبر 22 کا جائزہ لیا تھا پچھلی دو نشستوں میں صحیفے کی, اور وہاں سے ہم کو جو بنیادی طور پر جو فکر ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ انسان کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں یا مشکلات یا مسائل یا مصائب جو کچھ بھی آتے ہیں یا درپیش ہوتے ہیں, تو اس میں مین کنٹریبیوشن ہمارا اپنا ہوتا ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے, اور یعنی ایک متاسفانہ ہم لوگوں کا جو ایک حساب بن چکا ہے وہ یہ بن چکا ہے کہ ہم اپنی کسی بھی پریشانی کا ذمہ دار اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں. یعنی ہم جو ہیں وہ اس چیز میں مہارت حاصل کر چکے ہیں کہ کون سی کس پریشانی اور مصیبت کا بلیم کس کے گلے میں ڈالا جائے, اس کا رخ کس کی طرف کیا جائے. جبکہ یعنی کہ جو امام علیہ السلام کی دعائیں ہیں, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ میں کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک پڑھنا, یعنی کہ دنیا کی زندگی کا جو مین کمپلیکشن کیا ہے اور اس کے اندر آنے والے زندگی کے مشکلات یا آسانیاں یا تمام کی تمام چیزیں, اس کا پورا فریم ورک کیا بنتا ہے زندگی کے مسائل کا, کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ میں قرآن کریم کی آیتوں سے ایک پوری ایک پریزنٹیشن آپ لوگوں کے لیے بنا لوں, کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں اکثر لوگوں کے ذہن پریشان بھی رہتے ہیں اور وہ اکثر سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اسپیشلی یعنی کہ ان علاقوں میں, ان جگہوں پر کہ جیسے پاکستان, انڈیا ہے یا اور اس قسم کی جگہیں ہیں کہ جہاں پر لوگ کافی مسائل میں گھرے رہتے ہیں, کافی مشکلات ہیں. اچھا, اب اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ یعنی لوگوں کو جب ان کی معاش یا اکانومی متاثر ہوتی ہے تبھی انہیں لگتا ہے کہ ہم مسائل میں ہیں, حالانکہ خوشحالی کے اندر پیش آنے والے مسائل زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ فیل ہی نہیں ہوتے کیونکہ مادی طور سے لوگ مزے میں ہیں. یعنی خوشحالی میں آپ کے نفس پر جو دباؤ پڑتا ہے کہ آپ اسراف نہ کریں, آپ خود پسند نہ ہوں, آپ ریاکار نہ بنیں, آپ وسائل کو برباد کرنے والے نہ بنیں, آپ کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں اس سے آپ یعنی اب محروم طبقات کا کتنا خیال رکھتے ہیں, اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ یہاں ان مواقع پر, ان جگہوں پر کتنے زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں, کتنی پریشانیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خوشحالی میں وہ کیا ہے, دل پر, قلب پر وہ گرد اور میل کی تہیں جمتے چلے جانا کہ جو بندے اور خدا کے درمیان حجاب اور پردہ بنتی ہیں. کوئی فکر نہیں اس بات کی, کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کھانا پینا, رہنا سہنا, گھومنا پھرنا سب مزے سے چل رہا ہے. تو یہ بڑے مطلب یہ مسائل ہیں. تو انشاءاللہ میں اس کو کوشش کروں گا پوری کہ ان حوالوں سے کہ لوگوں پر, اقوام پر جو پرابلمز آتی ہیں, جو مشکلات آتی ہیں, جو مسائل آتے ہیں یا جو دیگر حالات آتے ہیں, کہ دنیا کی زندگی میں خدا کیا بتانا چاہتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, कैसे रहोगे, कैसे नहीं रहोगे, कौन सी जिंदगी अच्छी है, कौन सी बुरी है, ठीक है। और ये नहीं कि मैं एक छोटा सा नुक्ता आपके सामने रखता हूँ कि कुरान करीम में मक्तूल फी सबीलिल्लाह या हमारी जबान में, यानी नॉर्मल हम जबान में जिसको शहीद कहते हैं, कुरान ने शहीद के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है। युक्तलो फी सबीलिल्लाह, उनकी बहुत फजीलत बयान की है या नहीं की है? सूरह बकरा में भी है, सूरह आले इमरान में भी है, दो सूरतों में, कि उनके बारे में बोलना भी मत कि ये मुर्दा है, मैयत है, उनके बारे में गुमान भी ना करना कि वो मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इन तमाम चीजों का मतलब क्या है, इन बातों का मतलब क्या है कि कुरान की नजर में मक्तूल फी सबीलिल्लाह जो है वो एक बाफजीलत इंसान है या यूं ही है बस? बाफजीलत इंसान है ना जी, बाफजीलत है। तो अगर खुदा ऐसे हालात पैदा करे कि जिसमें लोग मक्तूल फी सबीलिल्लाह हो, तो वो हालात अच्छे ज्यादा हैं या ऐसे हालात ज्यादा बेहतर हैं कि जिसमें लोग खुदा की सबील में कत्ल ना हो? क्या कंक्लूड करेंगे हम, कौन से हालात ज्यादा बेहतर हैं? यानी कि ऐसे हालात, यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि अब ईरान जो आया, इनकलाब आया, या उसके बाद इनकलाब के बाद वाली हालत आई कि उसमें बहुत सारे लोग और नौजवान, अगर आप ज़ाहिरी एतबार से देखें तो बेचारे कितने लोग अपने घरों के चश्मो चिराग से महरूम हुए। तो अब यहाँ पर हमारे लिए मुश्किल आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है कि ये कौन सी सिचुएशन बेहतर है। यानी अगर हमें वो वाली हालत हो कि जनाब हम मजबूर हों जिहाद पर, हम मजबूर हों कताल पर, और फिर ये कि हमारे दरमियान से काफ़ी सारे लोग हैं जो मकतूल हों, और अगर वो उस फी सबीलिल्लाह हरकत कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो खुदा के उस वादे तक पहुंच रहे हैं कि जिसमें खुदा कह रहा है कि उनको हमारी तरफ से रिस्क मिल रहा है, वो मैयत नहीं हैं, वो अभी भी जिंदा हैं। लेकिन क्या हम उस किस्म की सिचुएशन को अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे? अब सोचें आप। तो अब इन सारे के सारे मकामात पे ना ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जिससे बात ये हो, यानी बात ये समझ में आती है कि हमारे और खुदा की सोच और फिक्र जो है ना वो डाइवर्ज हो जाती है, कि खुदा जिस तरीके से जिंदगी को लेके चल रहा है या हमारे लिए चला रहा है वो कुछ और हो जाती है, और हम जो समझ रहे हैं एक अच्छी जिंदगी वो कुछ और होती है। और फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर हम हमारी मर्जी से जब हमारी जिंदगी नहीं गुजरती तो वो जिंदगी हमें मुसीबत ज्यादा लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। मुसीबत का, परेशानी का, तकलीफ का तायुन हम कैसे करते हैं कि वो जिंदगी जो मेरे नजरिए के मुताबिक खुशी और खुशहाली और आसूदगी वाली जिंदगी है वो मैं नहीं गुजार पा रहा। यानी जैसे मैंने कई दफा मिसालें दी आपको जनाब अबू जर की, या वो लोग जो मक्के की जिंदगी में इब्तदाए इस्लाम में बेचारों ने बहुत तकलीफें उठाई, अजियतें उठाई, कत्ल हो गए, जैसे जनाब अम्मारे यासिर के वालिद वालदा दोनों कत्ल हो गए बिल्कुल शुरू में, और इस तरीके के अफराद, या फिर ये कि ओहद में खास तौर से जब 70 मुसलमान कत्ल हुए तो उनके सारे रिश्तेदारों ने उस वक्त भी एक हंगामा मचा दिया कि ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो यानी कि इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मुसीबत, परेशानी, अजियत, तकलीफ ये किसको कहते हैं खुदाई पर्सपेक्टिव में, और हकीकतन मुसीबत और वबाल किस चीज का नाम है और वो क्यों आता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आयद होती है, ठीक। यानी क्या खुदा जैसे कह लें कि यूं ही हमें ज़िंदगी में मुश्किलात देता रहता है, अगर कोई ज़ालिमीन है जब वो किसी कौम पर मुसल्लत होते हैं उसका कोई रीज़न होता है नहीं होता है, या वो कोई एट रैंडम चीज़ है जो खुद ब खुद हो जाती है। यानी जैसे अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे अफराद और हजरात जो हैं कि जो मिसाल के तौर पर फ़लाँ ज़ालिम, फ़लाँ तागूत, फ़लाँ हुकूमत, उसके ख़िलाफ़, ठीक है आप ज़रूर उसके ख़िलाफ़ बात करें, लेकिन आपको पहले ये भी तो समझना पड़ेगा कि वो आप पर मुसल्लत हुए क्यों हैं, उसकी रूट कॉज क्या है, उसकी जड़ में क्या चीज़ है। खुद ब खुद ही हो गए। अगर हमारा इस बात पर यकीन है कि ज़िंदगी का तमाम निज़ाम जो है वो खुदा के ताबे फरमान है, खुदा के हुक्म से हट के कुछ नहीं होता, खुदा के कब्ज़े कुदरत से कोई चीज़ भी बाहर नहीं है, तो फिर ये तसल्लुत किस बिना पे हासिल हुआ है? और क्या हमें ऐसी किसी भी एग्जाम्पल का पता है हिस्ट्री में कि जिसमें खुदा मोमिनीन पर फासिकीन और मुजरिमीन को मुसल्लत कर दे? क्या ऐसी कोई एग्जाम्पल है हमारे पास? ऑलमोस्ट नहीं है, हमारे पास नहीं है। यानी कि जब मोमिनीन अपने रास्ते से हटते हैं, इन्हराफ करते हैं, खराबियां उनमें पैदा होती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स उनके ऊपर आती हैं कि जालिम और तागुतियान उन पर मुसल्लत होते हैं। तो फिर अब अगर ऐसा हो रहा है तो उसका पहला सलूशन उनके खिलाफ बात करना है या पहला सलूशन अपने अंदर की खराबी को दूर करना है? ठीक है, अब ये सारे सवाल आते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसको कोशिश करूंगा कि ये पूरा जो एक निज़ाम है ज़िंदगी का कि जिसमें कि परेशानियां क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, परेशानी क्या होती है, मुसीबत क्या होती है, इन सबको आयात कुरानी से इंशाल्लाह एक पूरा एक वो बना दूं, एक डॉक्यूमेंट बना दूं। तो बहरहाल आज हम इस दुआ को लेके चलते हैं जो, और ये दुआ इसका मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दूं कि ये दुआ वैसे चौथे इमाम की है और ख़ास तौर से इसमें डायरेक्टली अपने ऊपर पड़ने वाली मुसीबतों और मुश्किलात को ही एड्रेस किया गया है। ठीक है, इन कंट्रास्ट टू दुआ नंबर 22 कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि ये दुआ जो है वाकई हार्डशिप्स और मुसीबतों के हवाले से ही मांगी जा रही है। इस दुआ को सैयद इब्ने ताऊस रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे एक बड़े बुजुर्ग और जय्यद आलिम गुजरे हैं, और उनका एक क्रेडिट ये है कि उन्होंने दुआओं के हवाले से बड़ी बेहतरीन किताबें मुरतब की हैं, कंपाइल की हैं आइम्मा अलैहिस्सलाम की दुआओं के हवाले से। तो उस उनकी किताबों में एक है महाजुद्दावात, उसमें भी उन्होंने इसी दुआ को थोड़े से डिफरेंस के साथ, मतलब दो दो तीन सेंटेंसेस थोड़े फ़र्क हैं, इसी दुआ को नकल किया है और उसके बारे में रिवायत ये की है कि इमाम नकी अलैहिस्सलाम, अली नकी अलैहिस्सलाम के असहाब में से एक शख्स था शायद अलयसा बिन हमज़ा कुम्मी, मोतसिम बिल्ला, जो हारून और मामून के बाद जो खलीफा बना था, मामून के बाद, और उन्हीं का मामून का भाई था। तो वो भी जालिम इंसान था, उसने नवे इमाम को भी शहीद कराया था। तो उसके एक वजीर ने, ये जो इमाम नकी अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, इसका माल वाल जब्त कर लिया था, इसके एसेट्स कॉन्फिस्केट कर लिए थे। तो ये बेचारे बहुत परेशान होकर इमाम अलैहिस्सलाम के पास आए। तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने इसी दुआ के पढ़ने की ताकीद की थी उन्हें, और फिर जब उन्होंने, और एक ख़ास अमल के तौर पर यह दुआ पढ़ी जाती है, मतलब उसकी ख़ास वो है कि इस वक्त पढ़ें, इतनी नमाज के साथ पढ़ें, कुछ कुरान भी है ना, इसका पूरा एक अमल की शक्ल
ये दुआ अभी शायद बता दिया हो आपने, मिस कर गया, तो कहाँ पे
है? सहीफ़ा सज्जादिया नंबर 7। तो इस दुआ के बारे में इन्हें खसूसी रिकमेंडेशन है कि ये सिर्फ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि उन्होंने जैसे 10वें इमाम से इसको नकल किया है आपके रिकमेंडेशंस में। तो तो ये दुआ ख़ास तौर से जब भी मसाइब मसाइल मुश्किलात परेशानियाँ, और जैसे मैंने कहा कि अगर आप उसका अमल करना चाहें तो अमल भी उसका पूरा बताया गया है जिसमें ये इसी दुआ के हवाले से, तो इसकी ये ख़ास सिग्निफिकेंस है। ठीक है, यानी जैसे आपके इल्म में होगा कि जो दुआएं जोशन है, जोशन सगीर, तो दुआएं जोशन सगीर जो है वो ख़ास तौर से सातवें इमाम के उससे है कि जब खलीफा जो था आई थिंक हादी हारून से पहले, और उसने इमाम के कत्ल का इरादा कर लिया था, तो आपने ख्वाब में रसूल खुदा को देखा था कि आपने फरमाया कि ये दुआ पढ़ो। यानी उसको अभी सैयद इब्ने ताऊस ने महजूद दावात में दुआए जोशन के नाम से नकल किया है, और कमोबेश वही दुआ जो है वो दुआए जोशन सगीर के नाम से हमारे हाथ में है। थोड़ा उसमें फ़र्क है, तो उसमें यानी कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे दुश्मन को खुदा हलाक कर देगा, और यही हुआ कि अचानक वो खुद ही मर गया, वो जो खलीफा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये दुआएं वगैरह जो मुश्किलात मसाए परेशानियां उसके हवाले से कि जो यानी आप यूं समझ लीजिए कि दुनियावी मसाइब और मुश्किलात के हवाले से भी ये सब मौजूद हैं। लेकिन जो बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप जब इन दुआओं की तिलावत करते हैं, इन दुआओं को पढ़ते हैं, तो इन दुआओं के अंदर हमें अपनी जाहिरी परेशानियों के हल के अलावा भी बहुत कुछ मिल रहा होता है, और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें मिल रही होती है वो मारिफ हक्का और इलाहिया नसीब हो रहे होते हैं। यानी हम हकीकत सच्चाई खुदाई उसूलों खुदाई कवानीन के बारे में जान रहे होते हैं इन दुआओं के वसीले से, न कि फ़कत ये कि हम कुछ लफ्ज़ और जुमले पढ़ लें और बस हमारी एक ज़ाहरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यानी इन फैक्ट अगर हम ये कहें कि हमारी दुनियावी प्रॉब्लम का सॉल्व होना जो है ना वो बिल्कुल एक साइड की चीज़ है, और असल जो इन दुआओं की बरकत है वो मारिफ हैं और वो हकीकत की गहराइयां हैं कि जो हम इसमें से अखज़ करते हैं। क्योंकि देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से उनके वसीले से जो ज़िंदगी का सबक हासिल करते हैं ना वो आपका सरमाया है फॉर एवर, वो इन्फिनिट ड्यूरेशन तक आपके पास रहने वाली दौलत है। उसको इतना हकीर ना बनाएं कि दुनिया की वो परेशानियां या वो मुश्किलात के जो खाली इस छोटी सी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, और बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए तो वो बगैर दुआओं के भी हल हो जाती हैं, कि इन दुआओं को फकत उस कीमत पे ना बेचें। ये दुआएं और ये कुरान और ये मारिफ जो है ना, ये आपकी दौलत और आपका एसेट और आपका सरमाया बनता है जो कभी भी आपके पास से नहीं जाता अगर आपने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, अगर आपने इन मारिफ को जज्ब कर लिया, तो इट इज अ लाइट, ये नूर है जो कभी भी आपके जात से जुदा नहीं होगा। तो हमें इन तमाम दुआओं और उन सबको फिर इसी नीयत के साथ इनकी तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसकी किरत शुरू करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें भी आप जिस बात को मुलाहिज़ा करेंगे वो है इमाम अलैहिस्सलाम का अंदाज़ और उसलूब कि किस तरीके से आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं और अपने नुक्ता नज़र को पेश कर रहे हैं। या मन तुहल्लु बिही उक़दुल मकारह, या मन तुहल्लु, ए वो के हल होती हैं खुल जाती हैं बिही जिसके वसीले से। उक़द अक्त किसको कहते हैं? अक्त अक्त नॉट नॉट गिरा लगने को, मिन शर्र नफ्फासात फिल उक़द, जो सूरह अलक में सूरह फलक में भी है ये जुमला ना, यानी कि जो गिरहें लगा लगा के नॉट्स बना बना के उस पर फूंकने वाले, जो कि एक जादू वगैरह के हवाले से जो एक तरीका है, और अक्त यानी निकाह को भी अक्त कहते हैं। क्यों अक्त कहते हैं? कि जैसे गिरा गिरा लगाना, टाइंग द नॉट। मकारह यानी वो चीज़ें जो मकरूहात हैं, वो चीज़ें कि जो हमें कराहियत में मुब्तला करती हैं, वो चीज़ें जो हमारे लिए अनप्लेजेंट हैं, उनकी गिरहों वो गिरहें जिसके वसीले से खुल जाती हैं, ऐ वो हस्ती। ठीक है, तो यहाँ से भी अब आप बात करने के अंदाज़ को देखेंगे, जो हमेशा हमें एक पूरा अदब और तहजीब सिखाता है कि कभी भी हमें जब हम खुदा की बारगाह में जाते हैं, चाहे हम कितने ही परेशान क्यों ना हो, तो ये नहीं है कि अपनी बात शुरू कर दें, बल्कि हमेशा उस हस्ती का जिक्र, हम्द, सना, दुरूद, ये तमाम की तमाम चीज़ें पहले आना चाहिए। और ये कुरान करीम की भी एक आयत में इस बात को समेट दिया गया है जो मैंने पहले बयान किया था, हो सकता है आपको याद हो, अम्मन युजीबुल मुज़्ज़र्रा इज़ा दआहु व यकशिफु सू, के वो कौन है जो जवाब देता है, आंसर करता है किसको? मुज़्ज़र को। इज़ा दआहु, जब वो उसे पुकारे। ठीक है, यानी इसमें इज़ा दआहु में खास बात क्या है कि एक तो ये कि तुम मुज़्ज़र हो, हालत इज़्तिरार में होना चाहिए, नहीं कि कैजुअली दुआ कर रहे हैं, कैजुअली बात कर रहे हैं खुदा से, नहीं। हाल मुज़्ज़र का क्या मतलब है? कि इंसान पैशनेट हो, एजिटेटेड हो, उसके ऊपर एक हाल और एक कैफियत तारी हो, और उस हालत में वो किसे पुकारे? उसे पुकारे, न कि अपनी हाजत को पुकारे। ठीक है, ये बहुत खास बात है। अम्मन युजीबुल मुज़्ज़र्रा इज़ा दआहु, जो अल्लाह को पुकारे। तो आप अगर जब भी इमाम अलैहिस्सलाम की दुआओं को देखेंगे तो आप हमेशा इस बात को मुलाहिज़ा करेंगे कि जो भी दुआ है, चाहे अपनी तकलीफ के लिए हो, अपनी अज़ियत के लिए हो, अपने मसाइल के लिए हो, लेकिन किसको पुकारना है? उसे पुकारना है, उसे याद करना है। तो फिर वो जवाब भी देता है और सू को, बुराई को कश भी कर देता है। तो या मन तुहल्लु बिही उकदुल मकारह, ऐ वो कि जितनी भी मकरूहात और अनप्लेजेंट चीज़ों की गिरहें हैं कि जो मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, गिरह का मतलब है ना कि ये जुड़ गई हैं, उन मकरूहात की गिरहों को खोलने वाला कौन है? ऐ वो हस्ती। वया मन युफ़ाओ बेही हद्दु शदाइद, युफ़ा फ़ा का मतलब ये होता है कि जैसे जब आग भड़कती है, या जैसे एक पतीली में आप पानी बॉईल करते हैं तो पानी एकदम से आप देखते हैं ना एजिटेट होकर ऊपर आता है, या कोई चीज़ होती है वो एकदम पक के उबल के ऊपर आती है, तो आप क्या करते हैं उसमें? कि उसके ऊपर और पानी डाल दें, या उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ डाल दें कि जिसकी वजह से उसका जोश ठंडा पड़ जाए। ठीक है, उसका जोश ठंडा पड़ जाए। तो जो शदाइद यानी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हैं, उनकी हदों के जोश को जो ठंडा कर देता है, यानी इफ़ योर एनवायरनमेंट इज़ अ मेल्टिंग पॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी जोश खा रही हैं सो मसाइल, मुश्किलात, तो ऐ वो हस्ती के जो उसके जोश को और उसके उबलने को ठंडा कर देता है, नीचा कर देता है। वया मन युल तमसो मिन हुल मखरज, मखरजो इला रौहिल फरज, और ऐ वो के उसी से इल्तमास की जाती है। इल्तमास, ये आप समझ लें कि लफ्ज़ इल्तमास जो है ना, ये इट इज़ क्लोज टू, जैसे आप शायद कहें अंग्रेज़ी में बेगिंग, यानी बेगिंग का जो वर्ड होता है वो ये नहीं मतलब उसका हमेशा होता है कि इंसान भीख मांग रहा है, बल्कि बेगिंग का मतलब ये होता है कि बहुत ही आजिज़ी के साथ दरख्वास्त करना, तो वो इल्तमास के उसमें आता है। वो या मन युल तमसो मिन हो, اے وہ کہ جس سے التماس کیا جاتا ہے کس بات کا؟ المخرج، نکلنے کی جگہ بنا دیں، الی روح الفرج، روح یعنی سکون، فریشنس، خوشی، آرام، فرج جیسے ریلیف، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا امام زمان علیہ السلام کا انتظار فرج، یعنی کہ وہ جس دن ہم نجات یافتہ محسوس کریں گے، جس دن ہم یہ محسوس کریں گے کہ ان تمام مصیبتوں کو ہم پیچھے چھوڑائے اور ہماری جان ان سب سے چھوٹ گئی. تو فرج کی روح کو، یعنی کہ اس ریلیف کو، کی فریشنس کو، اس کے سکون کو کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ایز اف ہی از ٹریپڈ ان اے پلیس، ایک جگہ پر بند ہو گیا ہے وہ، اس کو نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو وہ ہستی جس سے التماس کیا جاتا ہے، عاجزانہ درخواست کی جاتی ہے کہ روح فرج تک پہنچنے کے لیے میرے واسطے مخرج بنا دے، اوپننگ بنا دے، کوئی در بنا دے. ظلت لقدرتک الثعاب. اب دیکھیں کہ اب یہ والی جو سوچ ہے نا، یہ والی جو تھیم ہے، پیٹرن ہے آف تھنکنگ ہے، یہ کیا ہے؟ صعاب یعنی صعوبتیں. صعوبتیں اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی سختیاں. سختیاں، ٹھیک ہے؟ کہ یعنی جس میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بات، سختی کے اندر ایک خاص بات کیا ہوتی ہے کہ آپ سختی کو دو تین طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے اگر زمین بالکل سخت ہو جائے تو آپ اس زمین میں فار ایگزامپل کسی قسم کا کچھ اگا نہیں سکتے، کچھ نکال نہیں سکتے اس سے. یا اگر آپ کے سامنے آنے والی رکاوٹ بالکل سخت ہو جائے تو آپ اس میں سے اپنا راستہ نہیں بنا سکتے. اسی لیے ہارڈ شپ کا جو ورڈ ہے وہ اس سینس میں بھی آتا ہے کہ ہارڈ شپ کا مطلب ہے کہ چیزیں اتنی ہارڈ ہیں کہ آپ کے لیے اس میں سے گزرنا، اس میں سے راستہ بنانا، اس کو پار کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں دشوار ہو گئی ہیں. تو یعنی کہ وہ مشکلات کے جو انٹریکٹیبل ہیں، کہ جس سے گزر کے کیسے جائیں، پار کیسے لگیں اس سے. لیکن ذلت لقدرت کا صعاب، یہ جتنی بھی چیزیں ناقابل عبور ہیں میرے لیے، مشکلات ہیں، یہ کس کے سامنے ذلیل اور حقیر ہیں؟ کس کے سامنے؟ لقدرتک، تیری قدرت کے سامنے، یعنی تیری جو اتھارٹی ہے. قدرت یعنی کہ خدا کی اتھارٹی، اس کے سامنے یہ تمام صعوبتیں جو میرے لیے انٹریکٹیبل ہیں، میں گزر ہی نہیں سکتا ان میں سے، پار ہی نہیں ہو سکتا، اس کے سامنے یہ ذلیل ہیں، یعنی کہ ان میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ تیری قدرت کے سامنے کھڑے ہو سکیں یا اپنا زور اور سختی دکھا سکیں. وَتَسَبَّبَتْ بِلُطْفِكَ الْأَسْبَابِ. یہ خاص طور سے یہ جملے اس اعتبار سے قابل غور ہیں کہ ان تمام مقامات پر جو ہے نا، وہ ہمارا جو پریکٹیکل بلیف سسٹم ہے، پریکٹیکل، تھیوریٹیکل نہیں، پریکٹیکل بلیف سسٹم ہمیں کسی اور طرف لے جاتا ہے. یعنی اسباب آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے، مسائل کو حل کرنے کے لیے اسباب، ریسورسز، مینس درکار ہیں، لیکن اس بارے میں ہماری توجہ کم جاتی ہے کہ اسباب فراہم ہوتے ہیں، پریپیئر ہوتے ہیں، کریئیٹ ہوتے ہیں لطف خدا سے. تو یہ نہیں، بلکہ ہم کس طرف جاتے ہیں کہ پہلے سے وہ چیزیں جو ہم کو پاورفل نظر آ رہی ہیں हम उनको नेसेसरी रिसोर्स समझकर उनकी तरफ रुजू करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि आप अगर इस बात को देखें, अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तो ये मिसालें बहुत हैं, बहुत ज्यादा मिसालें, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो एक था, जाहिर है कि वो तो बेचारे पैदा ही सख्ती में बैठे ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो वो तो उनकी कौम सख्ती और मुसीबत में थी और हजरत मूसा उसी सख्ती में ही पैदा हुए थे। अब मूसा को जो कत्ल का इरादा करके बैठा था वो बादशाह, उससे उस फिरौन के कत्ले मूसा के इरादे को बचाने के लिए क्या सबब था? वहां पे कौन सा सबब एग्जिस्ट करता था, पता है? सोचें, कोई था सबब? इन्हें सबब से मुराद ये कि कोई पावरफुल लोग हो, कोई ट्राइब हो, कुछ हो, कोई कुछ, यानी कोई जो उसके मुकाबले में, हमारे लिए सबब यही है ना, कि अगर हम ये कहें कि भाई अगर कोई बहुत पावरफुल और टायरेंट है जो कि खुदा ना खास्ता हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो हम सबब क्या ढूंढेंगे? हम जो सबब ढूंढेंगे वो यही ढूंढेंगे ना कि भाई किसी और पावरफुल के पास जाओ या खुद पावर जमा करो या इस किस्म की कोई चीज़ करो, यही करेंगे ना, और क्या सबब निकालेंगे? सही। हजरत मूसा के बिल मुकाबले फिरौन उस कत्ल के हवाले से था कोई सबब? बनी उनकी अपनी कौम इस मुसीबत ज़दा थी जिनके बारे में कहा जा रहा है, कुरान ने खुद कहा है युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तहयूना निसाकुम, कोई भी सबब था? तो खुदा ने सबब क्रिएट किया, सही है ना? सबब कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। यानी आप वहां पर खड़े होके दूर दूर तक नजर दौड़ा लें, नथिंग इन साइट, और खुदा ने कैसे सबब क्रिएट किया, किस तरीके से सबब बनाया कि जो जालिम जो कत्ल का इरादा करके बैठा हुआ था उसी की गोद में पलवाया, उसी के घर में पलवाया। ठीक। तो इमाम अलैहिस्सलाम यहां पे फरमा रहे हैं कि सबब इधर उधर नहीं ढूंढने की जरूरत है, बल्कि वो हस्ती के जिसके लुत्फ से असबाब पैदा होते हैं, समझ रहे हैं? बहुत बहुत जबरदस्त बात है ये कि हम अपने परेशानी मुश्किलात के लिए रिसोर्सेज ढूंढते हैं, इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं रिसोर्सेज ढूंढने इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगर तुम वाकई लायक हो, मोमिन हो, तो खुदा क्या करेगा? तुम्हारे लिए सबब बना देगा। और यानी इस तरीके से खुदा असबाब पैदा करता है कि जो, जिसे कह लेना कि वो लोग जो सख्तियां लेकर आ रहे थे उन्हीं के दरमियान से सब कुछ बन जाता है, कि जो यानी बंदा सोच भी नहीं पा रहा होता कि ऐसा भी कोई सबब बन सकता है। तो तसब्बबत बिलुत्फ कल असबाब व जरा बिकुदरत कल कव्वा। कव्वा का मतलब होता है, जैसे आपको याद होगा हमने बताया था कव्वा और कदर में क्या फर्क होता है, कि कव्वा यानी डिक्री, डिक्री यानी हतमी हुक्म, एक फाइनल अल्टीमेट ऑर्डर, ये कव्वा है। और कदर के अंदर जो है वो एक नेटवर्क है कि जिसके अंदर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, कज़ा। और हालांकि लोग आमतौर से तकदीर को फाइनल समझ लेते हैं, नहीं, तकदीर फाइनल नहीं है, कदर फाइनल उसको नहीं कहते। कदर का मतलब होता है कि एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं और आपको ये इख्तियार दिया है कि आपकी चॉइसेस और डिसीजन मेकिंग की बिना पर वो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज आप पर जाहिर हों। लेकिन कजा का मतलब कजा है, कजा का मतलब एंड है, यानी डिक्री, ऑर्डर, फाइनल, उसमें कोई इधर से उधर होने वाली बात नहीं है। तो जो कजा है यानी हुक्म हतमी और आखिरी, वो तेरी कुदरत से जारी होते हैं। जिन्हें तेरी कुदरत से जारी होते हैं। अब उसकी भी मिसाल हमारे सामने अंबिया की जिंदगी में कि आपको याद होगा कि शायद सूरह अहज़ाब के जो हमने आयतें पढ़ी थी गज़वा अहज़ाब के हवाले से, तो उसमें जब ये मुसलमान मदीने में चारों तरफ से घिर गए थे तो उनमें से मुसलमानों में से ही एक गुरोह ने क्या कहना शुरू कर दिया था, जो जिनको कुरान ने कहा कि मुनाफिकीन और फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया था कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो भी वादा किया है वो धोखा था। यानी कि रसूल हमसे कह रहे थे कि मेरी उम्मत रोम और ईरान की सल्तनतों को ख़त्म करेगी, मेरी उम्मत दुनिया को फतह करेगी, मेरी उम्मत को खुदा इतने तमक्कुनत और इतनी तादाद बढ़ाएगा उनकी, वो तो अब तो ख़त्म सब। ये कौन सा वादा है कि अल्लाह और रसूल ने वादा नहीं किया अल्लाह गुरूरा मगर धोखा और फरेब। ठीक, तो यानी इसका मतलब यह है कि जब खुदा ने कहा कि कज़ाक, यानी कि जब रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत इस जगह तक पहुंचेगी, जब खुदा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बचपने में उनको ख्वाब के ज़रिए से बता दिया कि यूसुफ़ को हम ज़मीन में ये तमक्कुनत सल्तनत देंगे, यूसुफ़ को इस मकाम तक पहुंचाएंगे, तो अब वो भाई कुछ भी कर लें, कोई कुछ भी कर ले, जितना हसद कर ले, जितनी दुश्मनी कर ले, लेकिन अब इस क़ज़ाए इलाही का, यानी इमाम अलैहिस्सलाम का ये जुमला बता रहा है कि क़ज़ाए इलाही यानी खुदाई फैसलों को कौन सी चीज़ प्रोटेक्ट करती है, जुमला देख के बताएं, कुदरत। क़ज़ाए इलाही को व जरा बे कुदरत कल क़ज़ा, यानी जो क़ज़ा है तेरा हतमी फैसला ये तेरी कुदरत से जारी होता है। अब देखें कितनी बड़ी मारिफत का पहलू है, यानी खुदा असमाए हुस्ना है इलाहिया के हवाले से ही कितनी बड़ी मारिफत है कि खुदा का जो हतमी फैसला है उसको कौन सी चीज प्रोटेक्ट कर रही होती है, लेके चल रही होती है, कुदरत इलाही। अब किसी में ताकत है उसके आगे आगे खड़ा होने की, तो अब हजरत यूसुफ के भाई दुश्मनी करें, अगवा करें, गार में फेंकें, कुछ भी करें, कुएं में डालें, ये सारे काम करें, लेकिन कुदरत इलाही इन तमाम चीजों को यूसुफ के एडवांटेज में बदलती जा रही है। ठीक है, कोई उसको डिफीट नहीं कर सकता क्योंकि जो खुदा का फैसला है हतमी फैसला वो कुदरत खुदा से प्रोटेक्टेड है, उसके अंडर में चल रहा है, जारी हो रहा है। वह मवत आला इरादत कल अशिया, और जितनी भी अशिया हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब किस तरफ जाती हैं, आगे बढ़ती हैं, उसके इरादे की बिना पर, यानी जो इरादा इलाही है अशिया उससे हटकर और किसी भी बिना पर हरकत नहीं करती। यानी इरादा इलाही है जो हर शय को हरकत में लाता है, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाता है। फहिया बेमशीयत का दून कौल का मुअत्तमिरतुन, के जितनी भी अशिया हैं वो सब के सब क्योंकर इस्तेमाल होती हैं, क्योंकर काम में आती हैं तेरी मशीयत की बिना पर, ना कि तेरे कौल की बिना पर। इसमें क्या फ़र्क है? अब ये तमाम की तमाम चीज़ें गहरी मारिफत खुदा है, बहुत गहरी मारिफत खुदा है। वो जैसे कह लें वो दुआ हाजत वो तो अभी, लेकिन ये बलन मारिफ है इसमें। जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम का भी जो नहजुल बलागा का मारिकतुल आरा खुतबा है तौहीद का 184, नहजुल बलागा का खुतबा बाज में 183 है, बाज में 184 है नंबरिंग, तो वो खुतबा जो है ना इस कदर मारिफ तौहीद पर मुश्तमिल है कि उसका तहम्मुल अगर कोई कर ले तो वो यकीनन बाकमाल इंसान है, जो तौहीद और जिस तरीके से तौहीद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वहाँ बयान फरमाई। तो वहां पर आपके कुछ जुमले हैं कि जिसमें आप ये फरमाते हैं कि खुदा क्या है, फाइलुम बिल इरादा है, न कि फाइलुम बिल हरका। खुदा की जो फ़ेलियत है, खुदा का जो काम है, जैसे इंसान का जो काम है वो बग़ैर हरकत के नहीं मुमकिन होता, ठीक है, लेकिन खुदा कौन सा फ़ाइल है, बिल इरादा है। इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फ़यकून, ठीक है, इरादा इलाही है जो अशिया को हरकत में लाता है, एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ भी इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो जितनी भी अशिया हैं वो अगर इस्तेमाल में आती हैं, हरकत में आती हैं, तो किस बिना पर आती हैं, तेरे कौल नहीं, तू कहता नहीं है कि जाओ, आप कहते नहीं हैं कि ये काम करो या इस इस्तेमाल में आओ, बल्कि मशीयत इलाही है और उस मशीयत की बिना पर अशिया हरकत में आ जाती हैं। वब इरादे का इरादते का दूना नहिये का मुनज़जरतुन, मुनज़जर होने का मायना क्या है, यानी रोक लेना, मना कर दिया जाना, उनको बाज रखना। और अशिया तेरे मना करने से नहीं बल्कि तेरे इरादे से बाज रहती हैं, यानी तेरी मशीयत चीज़ों को जहाँ चलाती है वो उधर जारी हो जाती हैं, और तेरा इरादा उन्हें जहां रोक देता है वो वहां से बाज रहती हैं। यानी इसमें क्या खास बात है, थोड़ा सा इसको जरा पिक करने की कोशिश करें इन दो जुमलों में, इमाम अलैहिस्सलाम क्या समझाना चाह रहे हैं। तेरी मशीयत न कि तेरा कौल अशिया को जारी करता है, इस्तेमाल में लाता है, और तेरा इरादा न कि तेरा मना करना, न कि नहीं, उन्हें बाज रखती है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि सूरज और चांद दो मखलूकात हैं, दो अशिया हैं, दोनों अपनी अपनी हरकत में हैं, दोनों का इस्तेमाल है, दोनों का काम है, और ये बाज किससे हैं, जैसे सूरह यासीन की आयत में है कि ये पॉसिबल नहीं है कि चांद सूरज के ऑर्बिट में घुस जाए, सूरज चांद के ऑर्बिट में आ जाए, या अपने जो उनके लिए मदार है उससे हट जाए इधर उधर, जो उनका मैदान है, ये मना है, मना है ना उसके लिए, चांद के लिए मना है कि तुम इस ऑर्बिट से हटो, और उसके लिए करना क्या है कि तुम्हें इस वक्त इतनी रोशनी देना है, इस वक्त नहीं देना है, इस वक्त ज़मीन के इस हिस्से पर अपना असर डालना है, इस पर नहीं डालना है, सो पूरा एक काम है, ठीक। तो जो जिस इस्तेमाल में वो आ रहे हैं वो बेमशीयतिक तेरी मशीयत के ज़रिए से है, ना कि तेरा कौल है, और जिससे वो बाज हैं और रुके हुए हैं वो तेरे इरादे की बिना पर है, ना कि तेरे मना करने की बिना पर, ठीक, समझ में आए। तो यहां इमाम क्या बताना चाह रहे हैं, कौल और नहीं दोनों को नेगेट क्यों किया है और उसकी जगह मशीयत और इरादे को क्यों रखा है। देखिए आप अपने बारे में सोचें, अगर मैं आपसे कहूं कि आप का आपकी मशीयत, मशीयत को आप आसान अल्फाज में समझ लें चाहत, यानी एक आपके अंदर से जो एक चाहत आपके अंदर पैदा होती है, इवन इरादा भी जो है ना वो शायद थोड़ा सा उसके बाद आता है, मशीयत और चाहत के बाद आता है। चाहत बिल्कुल डीप लेवल पर होती है आपके अंदर, डीप इनसाइड, ठीक है। यानी जैसे उसकी मैं मिसाल आपको दूं कि आपके अंदर एक चाहत पैदा हुई कि मुझे कोई ठंडी चीज खानी चाहिए, ठीक, ये चाहत है। अब उसके बाद आपने उसकी बिना पर इरादा किया कि मैं फिर आइसक्रीम खाता हूं या कोल्ड कॉफी पीता हूं, ठीक। तो चाहत आपकी पहले आ रही है और फिर इरादा उस चाहत से जनरेट हो रहा है, और फिर उसके बाद आपकी थिंकिंग है, यानी थिंकिंग क्या है कि भाई ये कहाँ मिलेगी, कैसे होगा, फ्रिज खोलना पड़ेगा, दुकान जाना पड़ेगा, सो ऑन। और फिर जब आपकी ये थिंकिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो फिर आपका बदन हरकत में आता है, और उस वक्त आप किसी को ऑर्डर देंगे या खुद वो काम करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि आपकी ज़ात में कितने लेवल हैं, कितने लेवल बन गए। पहले आपकी मशीयत और चाहत, फिर इरादा, फिर सोच और फिक्र, और फिर अमल या कौल की मंजिल आई। ठीक, तो अब इस मिसाल के जरिए से आपको बात समझ में आ रही है कि इमाम क्या कहना चाह रहे हैं कि कौल और नहीं, यानी बोलना कि ये करो या रोकना और मना करना कि ना करो, ये उन तमाम स्टेजेस से गुजर के आखिरी वाली चीज को कहते हैं। और खुदा में इस किस्म की स्टेजेस नहीं पाई जाती हैं। बात वाजी हो रही, जब मैंने कहा था बहुत गहरी मारिफत है यहां पे, यानी जात खुदा हमारी तरह नहीं है कि जिसमें इस किस्म के दर्जा ब दर्जा चीजें आगे बढ़े और फिर आखिर में पहुंचने के बाद वो एक अमल और एक हरकत में ट्रांसलेट हो। नहीं, जो इरादे खुदा है वही अमल भी है। खुदा के अंदर वो चीजें ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म नहीं होती। ठीक है, तब ये बहुत टीप मारिफत है। समझ में आ रही बात आपको कि यानी ये जो मशीयत है वो डायरेक्टली, जैसे मैं अगर इस जगह तक पहुंच जाऊं कि मैं एक बात का इरादा करूं और आलम खारिज में वो चीज हो जाए, उसके बाद वाली स्टेजेस नहीं कि हाँ मैं ये करूंगा, कैसे करूंगा, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, फला क्या होगा, वो फिर उसके बाद काम करे आदमी। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो बीच में आती जाती हैं, ये क्या है, ये ज़ईफ़ी, कमजोरी की अलामतें हैं। तो खुदा में ज़ौफ नहीं है, खुदा में कमजोरी नहीं है, बल्कि बराहे रास्त मशीयत और इरादे से चीजें एग्जीक्यूट होती हैं और खुद ब खुद उसको फॉलो करती हैं। तो अब यहां पर अब क्या, यानी कि अगर आपको इस हद तक मारिफत मिल रही है, यानी जिसमें अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि जब आप खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं, आप अपने हाजत या कोई मसला लेकर हाजिर हुए, लेकिन फर्स्ट स्टेज पर आपको अपनी मारिफत को ऊपर लेकर आना है, मारिफत को सामने लेकर आना है, जिससे हमें ये वाजे होगा कि हम खुदा से किस मेयार पर आकर अपने मुद्दा और अपनी हाजत को बयान कर रहे हैं।
कुन फयकून भी इसी गहराई में आता है।
हाँ, कुन फयकून भी हकीकतन नीचे,
इरादे में इरादा
यानी नहीं, मैं कह रहा हूं वो भी उसके बाद है, इजा अरादा शैअन अन यकूल, और ये कौल खुदा वो बोलना नहीं है बल्कि वही वो इरादा ही है, इरादे की फॉर्म है कि हो जा फयकून, और वो हो जाती है, वो चीज वकू पजीर हो जाती है। ठीक, तो अब जब यहां तक पहुंचने के बाद आपने क्या किया कि खुदा के हवाले से जिस हस्ती से आप अपनी प्रॉब्लम्स के, जिस हस्ती के पास आप गए कि मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो आपने ये बात बताने की कोशिश की है, यानी अगर हम इमाम की दुआ पढ़ रहे हैं, मैं इमाम को नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं जब इमाम अलैहिस्सलाम के इन जुमलों और कलेमात को दोहरा रहा हूँ दुआ के तौर पर, तो यानी मैं अपने आप को ये बताना और समझाना चाह रहा हूँ कि मेरी मारिफत उस हस्ती के बारे में क्या है। ठीक है, यानी कि इसके मैं अगर एक पैरेलल एग्जांपल आपके सामने दूं कि ये भी हमारे यहाँ काफी एक नॉर्मल आदत बनी हुई है कि जी मैं तो हर अमल कुर्बतन इलल्लाह कर रहा हूं। ठीक है, आपका हर अमल कुर्बतन इलल्लाह होना चाहिए। आप अगर मिसाल के तौर पर कारोबार कर रहे हैं तो कुर्बतन इलल्लाह करें, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो कुर्बतन, बहुत खूब। لیکن جو انسان بھی یہ بات کہہ رہا ہے اسے قربتاً اللہ کا مطلب پتہ ہے, اسے پتا ہے کہ قربتاً اللہ بولتے کس کو ہیں, کہتے کس کو ہیں, یہ حقیقت کیا ہے, اس کا کنسیپٹ کیا ہے. یہ لفظ ہیں خالی یہ دو تین, قربتاً اللہ, اور اگر یہ ایک حقیقت ہے تو حقیقت جو ہے وہ یعنی آپ کے ٹرو پرسپشن کے حوالے سے انفولڈ ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی حقیقت کا کوئی تعلق بھی الفاظ سے نہیں ہے, درست ہے نا یہ بات؟ یعنی کہ جیسے آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل اگر آپ آئی ٹی میں ہیں, آپ پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو جو ورڈز آپ لکھ رہے ہوتے ہیں ایز اے پروگرام, ان کی کیا حقیقت ہے؟ ان لفظوں کی تو, ان ورڈز کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی نا, بلکہ اصل میں جو آپ کا پورا جو پرسپشن ہے, جو لاجک ہے, جو الگوریتھم ہے, آپ کا اپنے گول ایم اینڈ آبجیکٹیو کی جو معرفت ہے, اور پھر آپ اس کے مطابق جو پورا رستہ بناتے ہیں کہ میں اپنے الٹیمیٹ آبجیکٹیو سے کیسے کیسے نزدیک ہوتا چلا جاؤں گا, اہمیت اس کی ہے یا ان ورڈز کی ہے جو آپ پروگرامنگ لینگویج میں لکھ رہے ہوتے ہیں؟ بتائیں کون سی چیز اہمیت رکھتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ اسی اینالوجی کو یہاں پر لے کر آئیں, تو قربتاً اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی قربت حاصل کرنے کا جو پورا رستہ ہے, پہلے یہ سمجھو کہ اللہ کون, پھر قریب ہونے کا مطلب کیا, پھر قریب ہونے کی راہیں کون کون سی, ان راہوں پر چلنے کے طریقے کیا کیا ہیں, تو آپ اپنا قربتاً اللہ کا الگوریتھم لکھ پائیں گے نا. پھر ان میں سے کچھ بھی کسی بھی بات کا خبر نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, اور میں ہر کام قربتاً اللہ کر رہا ہوں, تو یہ تو نہیں پوسیبل ہے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا, اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا. تو اب یہاں تک جب آپ پہنچ گئے کہ آپ نے اس حد تک اپنی معرفت کو بیان کیا, معرفت کو سمجھا اس ہستی کے بارے میں, یعنی پہلا کام کیا ہے, جیسے وہی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ یہ لفظ نہیں ہے, بلکہ آپ کو باقاعدہ اپنی معرفت کو بیان کرنا ہے, بتانا ہے کہ وہ ہے کون جس کے پاس میں آیا ہوں اپنی پرابلم سالو کرانے کے لیے. ٹھیک ہے, جب یہ بتا دیا, جب یہ تمام باتیں بتا دیں, تو اب یعنی کہ وہی اس بات کا حقدار ہے کہ پریشانیوں میں اسی کو پکارا جائے. اور یعنی جیسے آئمہ علیہ السلام نے ایک اور بڑی زبردست بات بیان کی, وہ یہ ہے کہ خدا کی جو صفات ہیں نا, یعنی خدا کے حوالے سے جو صفات ہیں, وہ کنٹراسٹنگ صفات ایک ہی ذات میں جمع ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا امام علی علیہ السلام کی دعائے سفر میں آپ نے کیا فرمایا کہ تو اس سفر میں میرا ساتھی بھی ہے, اور میرے گھر والوں میں جن گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کر آ رہا ہوں ان میں میرا خلیفہ بھی ہے. یعنی تو ہی وہ ہے کہ جو میرے سفر میں بھی ساتھ رہ کے میری حفاظت کر رہا ہے, اور تو ہی وہ ہے کہ جو میری غیبت میں میرے گھر والوں کا بھی خیال رکھ رہا ہے جن کو میں چھوڑ کے آ گیا ہوں. اور پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ تیرے سوا یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کسی میں جمع نہیں ہو سکتی, کہ وہ ساتھی بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے اب جب امام علیہ السلام نے یہاں پر اپنی پوری معرفت کو بیان کیا اس ہستی کے بارے میں, اور اچھا آپ اس بات کو اور دیکھیں گے, جتنے بھی جملے ہیں یہ آپ کی کون سی معرفت کو ظاہر کر رہے ہیں, اس ہستی کی معرفت کو جو میری مصیبت اور مشکل کو دور کر سکتی ہے. اس بات پر بھی اب غور کیجئے گا, یعنی یہ جنرل معرفت نہیں ہے, یہ اسپیسیفک معرفت ہے. ٹھیک ہے, ان ریسپیکٹ ٹو واٹ یو آر گوئنگ ٹو آسک, कि आप जो भी मांगने जा रहे हैं, जो भी अपने चीज मुद्दा को बयान करने जा रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट से अपनी मारिफत को बयान किया, यानी मैं हाजिर हो रहा हूं अपनी मुश्किलात और परेशानियों के हल के लिए, आप ही के पास तमाम वो चीजें, यानी आप ही, यू आर द मोस्ट सूटेबल एंड मोस्ट एलिजिबल कि जिसके पास मैं आकर अपने इस मुश्किलात और परेशानी के हल को तलाश करूं। ठीक है, बात वाजे हो रही। अब ये तरीके जो है ना दुआ के, अगर इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें, तो यानी इसको अब, और यहां पर एक बात और भी जो है वो कहने जरूरी है कि आप अगर इस बात पे गौर करें कि हम ये कहते हैं कि मासूम की दुआ मुस्तजाब होती है, मासूम की दुआ कबूल होती है खुदा की बारगाह में, इट इज ऑलवेज आंसर्ड इन पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव। क्या वो चीज फकत खुदा मासूम की शक्ल देखकर उनकी दुआ को हमेशा पॉजिटिव में आंसर करता है, या इस हुस्न दुआ की बिना पर उनकी दुआ हमेशा पॉजिटिव में आंसर होती है? अब ये एक सवाल है ना, यानी अगर मिसाल के तौर पर कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और दीगर आइम्मा अंबिया के उनकी दुआएं रद्द नहीं होती, ठीक है, उसके मतलब ये नहीं, ये भी नहीं है कि फौरी फौरी, बल्कि लेकिन कबूल होती हैं, हमेशा खुदा की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है उनकी तरफ, तो क्यों आता है? फकत इसलिए कि उनकी पर्सनैलिटी एक नबी और इमाम की थी, या ये कि जो उनके मांगने का या खुदा की बारगाह में अपने मामलात और मसाइल को पेश करने का अंदाज है उसके अंदर ये खसूसियत थी और होती है कि वो हमेशा कबूल हो? अगर दूसरी बात सही है कि ये दुआओं की कबूलियत प्योरली पर्सनैलिटी बेस्ड नहीं है, बल्कि हुस्न दुआ और हुस्न तलब पर बेस करती है, तो फिर यहां से हमारे लिए भी कबूलियत का दरवाजा खुल गया या नहीं खुल गया? यानी कि अगर हम भी उस तरीके को अपनाएं, अगर हम भी उस रास्ते को फॉलो करें, क्योंकि खुदा जो है अब एक कानून के तहत दुआ कबूल कर रहा है ना, जैसे अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि भाई मुझे तो आप अच्छे लगते हैं, आप जो भी बात करेंगे मैं मान लूंगा, ये एक अलग बात है, बिल्कुल अलग बात होगी, और अगर मैंने अपने आप को इस बात पर कमिट किया है कि जो मुझसे इस तरीके से मांगेगा मैं उसको कबूल करूंगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमेशा उन आदाब का ख्याल रखते हैं तो हमेशा उनकी बात कबूल होती है, ठीक है, तो अब जो कबूलियत है वो किस पर डिपेंड कर रही है? उन लोगों पर या उस तरीके पर कि वो हमेशा उन उसूलों के साथ आते हैं, वो कभी भी उन रूल्स को वायोलेट नहीं करते कि जो खुदा की बारगाह में हाजिर होने के और तलब करने के रूल्स हैं और तरीके और मेथड्स हैं, ठीक। तो अब ये हमारे लिए भी आसानी हो गई ना कि अगर हम उन्हीं तरीकों को आइम्मा से सीख लें, उन तरीकों के मुताबिक अपनी तरबियत कर लें, और फिर उन्हीं रस्तों से हम खुदा के पास जाएं, तो हमारे भी पॉजिटिव में आंसर के देने की और जवाब होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएंगे ना। तो बात वाजे हो रही है कि अगर इस तरीके से इस तरीके दुआ को सीखें हम आइमा, और हम भी जब अपनी बात करें तो इसी अंदाज से बात करें, इस राह से गुफ्तगू करें खुदा से, इस राह से चाहें और मांगें, तो क्योंकि अब खुदा, यानी अगर हमें ये बात समझ में आ रही है कि ये फकत पर्सन बेस्ड नहीं है, بلکہ یہ رول بیسڈ ہے، خدا کا قبول کرنا، خدا کا جواب دینا، خدا کا لوگوں کی باتوں کو، ان کی حاجت روائی اور اس کو قبول کرنا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب ہم نے یہ والی اپنی معرفت کو بیان کیا، تو اب ہم اس بات کی طرف آئے کہ وہی ہستی، یہی ہستی ہے کہ جس کو مشکلات میں پکارا جائے اور جس سے مصیبتوں میں پناہ طلب کی جائے. کیونکہ دیکھیں، آپ کو جب ہم انسان مصیبتوں میں پھنستے ہیں نا، تو ہمیں سب سے پہلی چیز کیا چاہیے ہوتی ہے؟ یہ بھی بہت گہرا نظریہ ہے، اور یہ امام علیہ السلام کے ان جملوں سے ہی نکل رہا ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. جب انسان مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اسے سب سے پہلے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ امید، ایک پناہ گاہ چاہیے ہوتی ہے. پناہ گاہ چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے بعد نکلنے کا رستہ. یعنی اگر خدا نہ خواستہ کسی شہر پر بمبنگ شروع ہو جائے، تو آپ سب سے پہلے کیا ڈھونڈیں گے؟ نکلنے کا رستہ ڈھونڈیں گے یا پناہ گاہ ڈھونڈیں گے؟ ٹھیک ہے. تو اب جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، انتل مدعو للمہمات، یعنی جو چیزیں بھی مہم ہیں، مہمات یعنی کہ جو چیزیں میری پریشانی کا سبب بن رہی ہیں، جو چیزیں مجھے دوڑائے پھر رہی ہیں، انتل مدعو، تو ہی وہ ہے کہ جس سے ان تمام مقامات پر دعا کی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے. تمام مہمات میں تو ہی وہ ہے. لیکن اب آپ اس پر غور کیجئے گا کہ انتل مدعو للمہمات کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ جملہ پہلی سٹیج پہ نہیں آیا، فرسٹ اپ نہیں آیا، بلکہ پہلے ہم نے انتا یعنی تو، سب سے پہلے ہم نے اس انتا کو ڈیفائن کیا ہے. وہ جو دو انتا یعنی تو کون، جیسے وہی میں نے کہا نا، قربتن اللہ، ہم نے بول دیا آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، پتہ ہی نہیں قربت خدا کہتے کس کو ہیں، تو پھر قربتن اللہ بولنے کا کیا فائدہ ہے خالی. ٹھیک ہے، تو یہ انتا کی جب باری آئی کہ تو ہی ہے جس کو پکارا جاتا ہے تمام پریشانیوں میں، مہمات میں، تو اس انتا کو پہلے پورا ڈیفائن کیا ہے کہ آپ ہیں کون، ہم آپ کو کیا سمجھ کے پکار رہے ہیں، کس حیثیت میں بلا رہے ہیں، کیوں، کس کے پاس ہم جا رہے ہیں. انت المدعو للمہمات وانت المفزع فی الملمات. ملمات کا مطلب کیا ہے؟ سختی اور بلا اور پریشانی. جب سختی اور بلا اور پریشانی ہے، تو ہی پناہ گاہ ہے، اور جب پریشانیاں ہیں تو ہی مدعو ہے، یعنی تجھے ہی پکارا جاتا ہے. ٹھیک، یعنی تو ہی پناہ گاہ بھی ہے اور تو ہی ملجا و ماوا بھی ہے، جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے. لا یندفع منہا الا ما دفعتا، ان مصیبتوں میں سے کوئی بھی دور نہیں ہوتی، کوئی دور نہیں ہوتی، مگر یہ کہ جس کو تو دور کر دے. وَلَا يَنْكَشِفُ مِنْهَا إِلَّا مَا كَشَفْتَ، اور ان پریشانیوں کے جو بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں چھٹتے اور کھلتے، مگر جتنے کو تو کھول دے اور جتنوں کو تو ہٹا دے. ٹھیک، اب یہ تمام کے تمام جملے تکلفاً ہیں، یہ حقیقتاً ہیں. اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں بس خدا کو خوش کرنے کے لیے تعظیمی طور سے بیان ہو رہی ہیں، یا یہ زندگی کی مطلب انڈینائبل ریالٹیز ہیں کہ جو امام علیہ السلام ہم کو سمجھا رہے ہیں. اب یہ ہمیں غور کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد ہمیں اس چیز پر آنا ہے یا اس اپنے آپ کا جائزہ اس بات سے لینا ہے کہ پھر ہم اپنی پریشانیوں اور مشکلات میں کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, یعنی کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. کیا یہی بلیف ہے ہمارا, کیا یہی یقین ہے یا کچھ اور ہے. اب بیان کرنا شروع کیا, اتنا سب کچھ یہ مقدمہ کہ پہلے خدا کو اسپیسیفکلی اس کی تعریف بیان کی ایز اے سولوشن پرووائڈر ان ہارڈ شپس, اس کے بعد اس کو اسی کو بتایا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں انہیں تو ہی پناہ گاہ ہے, تو تجھے ہی پکارا جاتا ہے, تیرے سوا کوئی کسی مشکل کو نہ دور کر سکتا ہے نہ پریشانی کے بادلوں کو چاک کر سکتا ہے. اب فرما رہے ہیں وَقَدْ نَزَلَ بِي يَا رَبِّي مَا قَدْ تَقَعَدَّنِي ثِقْلُهُ, کہ اے میرے رب یقیناً مجھ پر وہ آن پڑا ہے, نازل ہو گیا ہے کہ جس کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا ہے, یعنی جس کا بوجھ مجھ سے اٹھتا نہیں ہے, وہ میرے اوپر آ گیا ہے, وہ چیز میرے اوپر نازل ہو گئی ہے کہ جس کا رنج زحمت اور مشقت کا بوجھ, یعنی جس کے بوجھ نے مجھے رنج اور زحمت اور مشقت میں ڈال دیا ہے. وَعَلَمَّ بِي مَا قَدْ بَحَضَنِي حَمْلُهُ, اور اس کے اٹھانے نے مجھے بہت رنجیدہ کر دیا ہے, اپریسڈ کر دیا ہے. اور پھر یہ جو دو جملے ہیں نا اب جو آ رہے ہیں, اب یہ دو جملے بھی یوں سمجھ لیں کہ ہمارے نظریے سے بہت بہت فرق ہیں. وَبِقُدْرَتِكَ أَوْرَدْتَهُ عَلَيَّ, یہ جو مصیبت اور پریشانی مجھ پر وارد ہوئی ہے, مجھ تک پہنچی ہے, یہ کیسے پہنچی ہے؟ بہت عجیب جملہ ہے. ہمارے نقطہ نظر سے ہم جس مشکل میں پھنسے اس کے ذمہ دار فلاں ہیں, اس کے ذمہ دار فلاں ہیں, ٹھیک ہے. امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ تیری قدرت ہے, یعنی تیری اتھارٹی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیز مجھ پر وارد ہوئی ہے. اب بہرحال ہم یہاں پر سوال کر سکتے ہیں کہ قدرت خدا اس مشکل اور اس مصائب کو میرے اوپر کیوں ڈال رہا ہے, میرے اوپر کیوں رکھ رہے ہیں. اور اگلا جملہ ہے وَبِسُلْطَانِكَ وَجَّهْتَهُ إِلَيَّ, اور تیری سلطان نے, تیری سلطنت نے میرا منہ اور میرا رخ اور اس مصیبت کی طرف کر دیا ہے. یہ میرے اوپر وارد ہوئی ہے تیری قدرت کی بنا پر, اور میرا منہ اس کی طرف ہو گیا ہے, میری جہت اس کی جہت سے ڈائریکشن ٹو ڈائریکشن میچ ہو گئی ہے تیرے سلطان کی وجہ سے. تو سب سے پہلی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی نا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ نظام خدا کے تحت ہوتا ہے, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا, کہ یہ نہیں ہوتا کہ جس میں ہم ہر چیز کو جو ہے نا ادھر ادھر کر دیں. ہر چیز, ہر مشکل, ہر آسانی, ہر مسئلہ, ہر سہولت, یہ کیا ہے؟ خدا کی قدرت اور سلطان کے تحت ہے, اس کی اتھارٹی, اس کی پاور کے تحت ہے. اب یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ خدا میرے اوپر یہ کیوں ڈال رہا ہے, ٹھیک ہے. وہی میں نے کہا کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں اس کا ایک پورا, آپ لوگوں کو کوشش کروں گا کہ پورا فلو چارٹ اور ایک پورا میپنگ کر دوں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کیوں ہوتی ہیں. اچھا, اور ہر انسان کے لیے الگ الگ باتیں ہوتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ مثال لیں تو حضرت موسیٰ نے بھی تکلیفیں اٹھائیں نا تکلیفیں, یعنی کہ جب مصر میں وہ ہوا, وہاں سے بھاگنا پڑا, وہ ہوا, پھر مدائن چلے گئے, پھر مطلب سختی تو اٹھائی نا. بنی اسرائیل نے بھی سختی اٹھائی, ان کے ساتھ ساتھ ان کی قوم نے بھی سختی اٹھائی. دونوں کے اوپر آنے والی سختیاں جو تھیں وہ من جانب خدا تھیں، ٹھیک، لیکن کیا دونوں سختیوں کا نیچر ایک ہی تھا؟ دونوں سختیوں کا پرپز ایک ہی تھا؟ کیا دونوں کی سختیوں نے ایک ہی قسم کے نتائج کو برآمد کیا؟ بالکل بھی نہیں. حضرت موسیٰ کو خدا نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا، بالکل بگننگ میں، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ طغیانگر ہو گیا ہے. اور پھر اس کا مقصد کیا بتایا؟ لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم تجھے اپنی بزرگ نشانیوں میں سے دکھائیں. تو حضرت موسیٰ پر پڑنے والی تمام سختیوں کا پرپس کیا تھا؟ کہ وہ خدا کی بزرگ نشانیوں میں سے دیکھیں. بنی اسرائیل پر پڑنے والی سختیوں کا پرپس کیا تھا؟ کہ وہ ان سختیوں سے گزر کر اپنی ظاہری نجات تک پہنچ جائیں، فار ایگزامپل. ٹھیک، تو یہ ساری کی ساری سختیاں جو آتی ہیں نا، نہ ہر ایک کے لیے ایک نتیجہ لے کر آتی ہیں، نہ ہر ایک کے لیے ایک پرپس لے کر آتی ہیں، ایک پرپس کے تحت آتی ہیں، لیکن ہر سختی کیا ہوتی ہے؟ قدرت خدا اور سلطان خدا سے باہر کچھ نہیں ہوتا. اور اسی قدرت اور سلطان، اسی پاور اینڈ اتھارٹی کی بنا پر وہ سختی وارد ہوتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر آپ کو جو بھی پرابلم درپیش ہوتی ہے لائف میں، تو پھر باقی کسی کا بھی شکوہ کرنے سے پہلے نا انسان اس کا ریزن اور وہ چیز دیکھے، کیونکہ وہ سب کچھ نظام خدا کے تحت ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. فلا مصدر لما اوردتا ولا صارف لما وجہتا. اب آپ نے فرمایا کہ ایک وارد ہوا، ایک کی میری جہت سیم ہو گئی، تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو میرے اوپر وارد ہوا ہے اس میں کارگشا، کارگشا کا مطلب یہ ہے کہ کام کو کھول دینے والا، مسئلے کو حل کر دینے والا، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. ولا فارف لما وجہتا، اور جو میرے منہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے اس کو پلٹا دینے والا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک، ولا فاتحہ لما اغلقتا، جسے تو نے بند کر دیا ہو، جو راہیں جو دروازے تو نے بند کر دیے ہیں ان کو کھولنے کی سکت کسی میں نہیں ہے. ولا مغلق لما فتحتا، اور جو راہیں تو نے کھول دی ہیں ان کو بند کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. فتحہ، فتحہ یعنی کھولنا، فاتح اسی سے ہی، اور غلق جو ہے غلق یعنی بند کر دینا، کلوز کر دینا. تو جسے تو نے بند کر دیا یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ خدا راہیں کھولتا بھی ہے اور بند بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے لیے بند کر دیتا ہے رستے، کچھ کے لیے کھول دیتا ہے. اور جہاں جہاں پر خدا بند کرے گا اس کو کھولنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور جن کے لیے خدا رستوں کو کھول دے گا ان کے لیے بند کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. ولا میسر لما عسرتا، اور جسے تو نے سختی عسرت میں ڈال دیا اس کے لیے کوئی آسانی پیدا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر ہی جو ہے نا، ان تمام جملوں سے ہمیں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خوف کا بھی بہت مقام ہے یہاں پہ. صحیح، یہ بات ہمیں پتہ نہیں کیوں اتنی سمجھائی نہیں جاتی ہے. ہمیں جب ایک بات کہی جاتی ہے جی خدا رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، سب ہے، تو اس سے ہم یہ مطلب نکال لیتے ہیں ارحم الراحمین سے کہ ہم جو جس کا دل چاہے کرتا رہے، خدا تو معافی کر دے گا. لیکن اگر آپ خود قرآن کریم کی رضوان الہی، مغفرت الہی کی بھی بات ہے، عذاب علیم و شدید کی بھی بات ہے، پتہ ہے قرآن میں یا نہیں ہے؟ दोनों बातें हैं या नहीं है? अभी इंशाअल्लाह रमजान आ रहा है, दुआ इफ्तिताह पढ़ेंगे, उसी के अंदर शुरू में ही जुमले हैं, अंता अरहमुर राहिमीन, ऐसे ही है, फी मौज़िउल अफ्वि वर रहमा। मौज़िउ का मतलब होता है जगह, प्लेस। अफ्व व रहमत के मकाम पर तुझसे बढ़कर रहम करने वाला कोई नहीं है। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं हो रही है। व अंत अशद्दुल मुआक़िबीना फी मौज़िउन नकाल व नक़मा, और जहां पर नाराजगी और इंतकाम का मकाम है वहां तुझसे बढ़कर सजा देने वाला कोई नहीं है। दोनों बातें, तो हमें किस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम हमेशा मौज़े अफ़वो रहमत में अपने आप को रखें, ठीक है? यानी कि खुदा की रहमत को हासिल करने का मतलब ये नहीं है खुदा के अरहम और राहिमीन के जो दिल चाहे करें, बल्कि हमें इन्हीं मारिफ के जरिए से बातों को समझते हुए अपने को कौन सी डोमेन में हमेशा रखना पड़ेगा, जो मौज़े अफ़ो रहमत है, यानी जिस डोमेन में खुदा, जो डोमेन खुदा की रहमत का अहल है, तब अरहम और राहिमीन के रहम से फायदा उठा सकेंगे। लेकिन अगर हम खुदा ना खास्ता वो हरकत करें कि जो नकाल और नकमत वाले डोमेन में हमको खुदा ना खास्ता ले जाए, तो वहां अरहम और राहिमीन थोड़ी है। तो ये यानी कि अगर मिसाल के तौर पर लोग गुनाह, हराम, खराबी, बदकारी, कीना परवरी, हसद, बोग्स, ये सब काम करें, तो वो कौन से डोमेन में जिंदगी बसर कर रहे हैं? वो मौज़े अफ़ो रहमा में है क्या? तो उन पर आपके ख्याल में क्या आएगा? तो ये दुआएं हमें वो मारिफत दे रही हैं, सही? और इमाम अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि ये दोनों चीजें मौजूद हैं, जिसके लिए फिर खुदा तंगी कर दे उसके लिए कोई आसानी पैदा नहीं कर सकता। वला नासिरा लिमन खजलता, और जिसे तू जलील कर दे उसका नासिर कोई नहीं है, कोई उसे उठा नहीं सकता, कोई उसे बाइज्जत नहीं बना सकता, कोई उसका मददगार नहीं बन सकता। सही बात वाजे हो रही है? तो हमें इन तमाम चीजों का बहरहाल ख्याल रखना है इंशाअल्लाह। फिर अगली दफा मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, आज हम यहां तक रोकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर अब उसमें फिर अपनी हाजात और वो सब बयान हो रही हैं। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के बाद, यानी कि जब हम अपनी मारिफत को हासिल करते जा रहे हैं दुआओं के तवस्सुल से, इमाम अलैहिस्सलाम की बरकतों से, तो हमारे सामने दो तीन बातें जो है ना वो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। पहला मसला ये कि कोई चीज़ भी कब्ज़े कुदरत खुदा से बाहर नहीं है, कोई चीज़ भी खुद ब खुद नहीं होती, बल्कि कानून खुदा और निज़ाम खुदा के तहत होती है। और कानून खुदा और निज़ाम खुदा में मेन इम्पोर्टेंस और अहमियत हमारे किरदार और अमल की होती है, ठीक है? जिसकी वजह से फिर खुदा हमारे लिए फैसले करता है कि इसको उसरत देना है कि युसर देना है कि जिल्लत है या बरतरी है या फला है, क्या है, क्या है। ये बात हमें अब तक बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि हार्डशिप्स में, प्रॉब्लम्स में, दुश्वारियों में ये रूल्स हैं जो अभी तक हमको इन उससे दुआओं के बरकत से या उस मारिफत से मिलते हुए या रोशन होते हुए नजर आ रहे हैं। जी,
एक मुश्किलात के हवाले से कुछ ऐसी भी मुश्किलात आती हैं जो इंसान की अपनी किसी वजह से क्रिएट होती है,
अपनी वजह से ही तो होती है, ये तो हम कह रहे हैं।
तो वो जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत में इनिशिएट नहीं होती, वो हमने खुद इनिशिएट की होती।
नहीं, हम वजह बने होते हैं ना, लेकिन मुश्किल का जो पूरा निजाम है वो तो कुदरत खुदा के तहत ही बनता है ना।
वो जो लॉ है,
जो कुदरत यानी अल्लाह की अथॉरिटी के, अब इंसान ने एक गड़बड़ की, यानी जैसे मिसाल के तौर पर एक कौम है जो मासियत और हराम में पड़ गई, अब ये सबब उसने क्रिएट किया अपनी वजह से, लेकिन अब इसके नतीजे में कौन सी मुसीबत पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, क्या हालात आएंगे, वो कुदरत खुदा के मातहत है, वो सब पर एक जैसे होते भी नहीं है। तो उसी चीज को इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि यानी तेरी कुदरत ने इसको मेरे ऊपर वारिद किया है। जी,